Hare Krishna, it's a fortune to listen His Grace Rukmini Krishna Bhaji on Srimad Bhagavatam, 7th canto, 6th chapter and verse number 1, on 28th of April 2007, and the topic is Teachings of Prahlad Maharaj.
सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा ना देकर माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या ना बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दे। और यदि भाग्यवश बालक बच जाता है तो उसे इंद्रतृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निस्संदेह लोग कुकर और शुक्रों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन को पतित बनाते हैं। कृष्णा भावामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में ना जागे। जैसा कि कैलाश महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाप सेवनम अर्चनम मरणम दास्यम साख्यम आत्मवेदनम निहित है। सारे स्कूलों कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारे और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा अशुभ जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरे राम एव केवलम करो नास्ते 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 प्रतिरंजन। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का चिंतन करता है उसका विजय शुभ हो जाता है और अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है। ओम अज्ञान निरंतरस्य ज्ञान राजीव श्लोक हमने इसलिए लिया क्योंकि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है। कोई बता सकता है कौन सा उत्सव आ रहा है? नरसिंह देव भगवान की कहा ये उत्सव मंगलवार। तो भगवान नरसिंह देव जी क्यों प्रकट हुए थे? अपने प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज की दर्शन कर रहे थे। तो ये हम चर्चा उस दिन करेंगे कि प्रहलाद महाराज को कितने कितने संकट उठाने पड़े और स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज जी केवल 5 वर्ष के थे और उनके ऊपर हिरण्यकश्यप ने इतनी यातनाएं की कि प्रहलाद महाराज उनको सहते रहे और ना केवल यातनाओं को सहते रहे, जब वो विद्यालय में जाते थे तो उनके अध्यापक थे शुक्राचार्य के पुत्र। कौन थे? ध्यान रखिए को नाम झंडो रामपाल। तो वो उनको तरह तरह के आसुरी विद्याएं सिखाते थे, राजनीति शस्त्र चलाने का ज्ञान और आसुरी विद्याएं। तो प्रहलाद महाराज की उन्हें कोई रुचि नहीं थी। प्रहलाद महाराज क्या करते थे, जो एक सफल प्रचारक होता है वो हमेशा मौके ढूंढता रहता है कि कहां मुझे मौका मिले और मैं प्रचार करूं। तो जैसे जैसे कि आजकल स्कूल में रिसेस पीरियड होता है ना, बच्चों के कुछ रिसेस ब्रेक मिलता है तो यहां पर बच्चे खेलते हैं कूदते हैं। तो पहला महाराज अपना समय खेलने को तो गर्व नहीं होते थे। जैसे उनको समय मिलता था क्षण नंबर होते थे और सारे बच्चों को बुलाते थे फटाफट सभा और वो प्रचार शुरू कर देते थे। तो ये प्रचार में एक श्लोक भी बोलते थे, कौमार मात्र प्राणियों धर्मान भगवान ही दुर्लभ मानुषण धर्मान कदमी आत्मा प्रार्थना। कोई कह सकता है कि प्रहलाद महाराज 5 साल के बालक हैं, भावुक हो गए, बालक ही तो हैं, तो उनकी बातों का इतना महत्व क्यों दे? कोई बच्चा आके हमें कोई बोलेगा तो वे बच्चा छोड़ कोई बात धीरे समझ जाएगा, उसको कोई मालूम नहीं है जीवन की सच्चाई का, उसको ज्ञान नहीं, बच्चा हमें क्या ज्ञान देगा, है ना? तो प्रहलाद महाराज कोई साधारण बालक नहीं है। प्रहलाद महाराज कौन है? 12 महाजनों में से एक महाजन है। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनो प्रहलाद जनको विष्णु बलि व्यास की वयम भागवत के 6वें स्कंद में यमराज जी बता रहे हैं कि 12 महाजन है, ब्रह्मा जी नारद जी शिव जी 4 कुमार भगवान कपिल मनु प्रहलाद महाराज भीष्म देव जनक बलि बलि महाराज सुखदेव गोस्वामी और स्वयं मैं यानी कि कबराज जी, फिर 12 महाजन है। तो प्रहलाद महाराज जी की गणना 12 महाजनों में होती है। कि महाजन कोई जाति के महाजन नहीं है, आजकल महाजन कई तो ऐसे परिवार में महाजन आ गए, बोले महाजन नहीं है। ये महाजन का अर्थ है महाजन, महान लोग हैं। क्यों महान लोग हैं? क्योंकि ये धर्म के सिद्धांत की गुणता को समझते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि धर्म के सिद्धांतों की गुणता को समझना, उनका जो रहस्य को समझना इतना सरल नहीं है। केवल ये महाजन लोग ही धर्म के सिद्धांतों को अच्छे ढंग से समझते हैं। तो धर्म के सिद्धांतों को समझने का क्या अर्थ है? धर्म के सिद्धांतों को समझने का अर्थ यह है कि अपने जीवन को हमें किस ढंग से जीना चाहिए। धर्म की सरल परिभाषा यह है कि एक आदर्श जीने का तरीका, सबसे सरल परिभाषा, एक आदर्श जीने का तरीका। आजकल बहुत से ऐसे तथाकथित गुरु हैं जिनको जैकेज गुरु बोलते हैं, वो सिखा रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग, वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं लेकिन उसमें कोई धर्म का स्थान नहीं, वो अपना ही कोई धर्म चलाते हैं, तो वो धर्म से बिल्कुल दूर है। जो धर्म है उसका अर्थ ही यही है कि जीने का आदर्श तरीका। ये जितने भी वैदिक साहित्य लिखे गए हैं, शास्त्र लिखे गए हैं, ये सब हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, हर व्यक्ति आज के समय में संघर्ष कर रहा है, वो बोलता है कि अपने जीवन में कैसे बैलेंस लाऊं। आपको ये समस्या है? आप इसे कितने लोगों को समस्या है कि लाइफ में बैलेंस कैसे लाया जाए? कितने लोगों को यह समस्या है? एक तरफ परिवार, एक तरफ फैक्ट्री, एक तरफ मंदिर, एक तरफ मित्र, एक तरफ समाज, क्या क्या करो, है ना। एक कोका कोला कंपनी के सीईओ थे, वो कहते थे कि लाइफ में स्ट्रेस क्यों है कि सब लोग 5 बॉलें हैं, 5 गेंद हैं, आपको ऊपर उठाओ तभी दूसरी गेंद नीचे आ जाएगी। आप 5 गेंदों को अपने 2 हाथों से पकड़ो, कितने गेंदें हवा में रहते हैं, कितने हाथ में, कुछ पता नहीं है। लड़ाई होती रहती है, कभी यहाँ टाइम ज्यादा दो तो घर में लड़ाई, घर में ज्यादा दो तो ऑफिस में लड़ाई, मंदिर लाओ तो मंदिर के बाद पकड़ रहे, समझ नहीं आता क्या करें। तो व्यक्ति परेशान है, कभी क्या कर देता है, कभी क्या कर देता है। इसका मतलब हम सबको धर्म के सिद्धांतों की अभी पक्की समझ नहीं है, पकड़ नहीं आएगी। तो अगर धर्म के सिद्धांतों से समझ जाएंगे तो आदर्श देने का तरीका है, तो लाइफ परफेक्टली बैलेंस, पूर्ण रूप से संतुलित जीवन, है ना। तो आप सब लोग संतुलित जीवन जीना चाहते हैं? इतना उत्साहित मैं जो चल रहा है ठीक है, चल रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा अच्छा हो, जीना चाहते हैं सब संतुलित जीवन? हाँ या नहीं? तो ये कहेंगे तभी हम शुरू करेंगे, अन्यथा कोई पता नहीं। तो यहां प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं कि संतुलित जीवन कैसे जिया जाए। तो केवल साधारण बालक नहीं है, वो धर्म को अच्छे ढंग से समझते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि 5 साल के बालक को इतना ज्ञान कैसे आ गया? उनके सहपाठी ने पूछा कि यार तुम तो बहुत ही गहरा कर दे रहे हो, उन्हें कहां से सीखा? हमने तो सीखा नहीं, क्षण वर्ग ने सिखाया नहीं है क्या, तुमने कहां से सीख लिया? तो प्रहलाद महाराज उनको बताते हैं कि जब मैं मां के गर्भ में था, कयाधुन के मां का नाम था, तो नारद मुनि जी के आश्रम में मेरी माता निवास कर रहे थे, तो नारद मुनि जी ने मुझे ज्ञान दिया, तब से मेरे ज्ञान को मांगा है। तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए, जो प्रहलाद महाराज जा रहे हैं बता रहे हैं वो हमारे असली लाभ के लिए। तो क्या हमारे प्रहलाद महाराज जो एक महाजन है, ध्यान लोगों का अनुवाद सुनिए। पर्याप्त बुद्धिमान को चाहिए, जो व्यक्ति कहता है कि मैं बुद्धिमान हूं उसके क्या लक्षण? पर्याप्त बुद्धिमान को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही क्या करे, अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। जीवन के प्रारंभ से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर इस मनुष्य शरीर का उपयोग भक्ति के लिए करें। क्यों करें? क्योंकि यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। देखिए कितना सुंदर संदेश दिया है। कला महाराज कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण भागवतों के ग्यारहवें स्कंध में बता रहे हैं कि मैंने कई तरह की योगों की रचना की है, किसी के चार पैर हैं, किसी के दो पैर हैं, किसी के एक पैर है, किसी का कोई पैर नहीं है, कोई उड़ने वाला है, कोई देखने वाला है, तो तरह तरह के जीवों की भगवान ने रचना की है। भगवान कह रहे हैं इन सब जीवों में मुझे जो सबसे प्रिय जीव है वो है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य शरीर पाकर ही जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है। तो प्रश्न हमारे मन में जो उठ सकता है कि आखिर इतना जरूरी क्यों है भगवान की भक्ति करना? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना इससे आवश्यक है क्योंकि सब जीवात्माओं का भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। भगवान गीता के पांडव अध्याय में बता रहे हैं मम ही मनुष्य जीव लोग जीव भूत सनातना, और फिर अर्जुन को चौदह अध्याय में बता रहे हैं कि सब मनुष्य बोलते हैं अहम जीव बीज प्रदान पिता, कि जितनी भी योनियां हैं उनका मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। तो वास्तव में प्रत्येक जीव का भगवान के साथ ही संबंध है। तो जब तक हमारा किसी जीव के साथ संबंध नहीं होगा हमें रस की प्राप्ति नहीं होगी। हम सब अपने जीवन में रस को ढूंढ रहे हैं। रस समझते हैं एक आनंद, एक टेस्ट ढूंढ रहे हैं, चाहते हैं हम सब रस को। तो पति पत्नी में रस को ढूंढ रहे हैं, पत्नी पति में, मां बाप बच्चे में, बच्चे मां बाप में, हम सोसाइटी में, मित्रों में, सब जो भी संबंध हमारे बने हुए हैं इन सब में हम कुछ रस ढूंढ रहे हैं। इसी रस, यही रस हमें मोटिवेट करता है, हमें उत्साहित करता है कि व्यक्ति सुबह सुबह उठकर फैक्ट्री में जाता है, मां लगे तरह तरह का संघर्ष करता है, रात को आता है, बच्चे तंग कर रहे हैं, पत्नी तंग कर रहे हैं, सारे सारे कष्ट और दुख सहता है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ रस मिल रहा है। आप लोग सोचिए कोई व्यक्ति कब तक ऐसा करेगा कि सुबह जल्दी उठ रहा है, मेट्रो में धक्के खा रहा है, बसों में धक्के खा रहा है, ट्रैफिक जाम में फंस रहा है, ऑफिस में जा रहा है, दुकान में जा रहा है, वहां पे तरह तरह की लड़ाइयां, गवर्नमेंट के छापे पड़ रहे हैं, टैक्स बचाना है, ग्राहकों से लेन देन करना, लेबर से हैंडल करना, कितना सरदर्दी है ना। उसके बाद फिर वापिस आता है, ट्रैफिक जाम से फंसता हुआ, लड़ता झगड़ता हुआ घर में पहुंचता है, घर में पहुंचता है बोलता है कि ये डिमांड पूरी नहीं हुई, वो डिमांड पूरी नहीं हुई, जब क्या कर रहे हो, जीवन बेकार हो गया, फिर झगड़े झगड़े, फिर भी बेचारा सब कुछ चुपचाप सह है, फिर अगले दिन उठता है फिर ये कहानी चल रही है। तो उसको क्या उत्साह मिल रहा है, कहां से उसको शक्ति मिल रही है कि रोज इतना संघर्ष कर रहा है? उसको थोड़ा सा रस प्राप्त हो रहा है इन संबंधों में, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, कभी किसी ने खुशी से भी बात कर ली तो उसको रस मिल रहा है कि हाँ बस मिल गया, फिर वो उत्साहित होकर फिर संघर्ष के लिए निकल जाता है। लेकिन इस रस से हमारा काम नहीं चलेगा। एक बहुत प्रसिद्ध कवि है जो बोलते हैं कि भौतिक संसार में जो हमें सुख मिल रहा है, जो रस मिल रहा है वो ऐसा है जैसे कि रेगिस्तान में एक पानी की बोट खत्म, तो क्या प्यास बुझेगी है ना। तो फिर हमें चाहिए ऐसा रस जो कभी समाप्त ना हो, और वो रस हमें मिलेगा जब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध को जोड़ेंगे। देखिए आप सब ग्रस्ताश्रम में हैं तो इसे कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मैं जो कुछ कहूंगा इस संसार की कठोर सत्य बोलूंगा, है ना। किसी को ठेस पहुंचाने के हमारे उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इस जीवन में हम देखते हैं हम अपने सगे संबंधियों को, परिवार वालों को जितना मर्जी प्रयास कर लें सुखी करने का, क्या किसी को हम संतुष्ट कर सकते हैं? किसी को किसी का एक्सपीरियंस है कि किसी के पिता ने, माता ने, भाई ने, भाभी ने आके बोला हो कि प्रभु जी, माता जी, आपने जो मेरे लिए किया मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूं। किसी को एक्सपीरियंस है? हर व्यक्ति की ये कंप्लेंट है कि मैंने इसके लिए क्या नहीं किया और यार देखो मुझे क्या कर रहा है। तो उसके पास जाएंगे, बोले मैंने इसके लिए क्या नहीं किया और आज देखो मुझे क्या कर रहा है। हर व्यक्ति असंतुष्ट है और हर व्यक्ति इस तरीके से प्रयास भी करता है उसको खुश करने का, लेकिन खुश नहीं करता। तो किसी ने सोचा ऐसा क्यों? देखिए, जीवन बड़े वैज्ञानिक तरीके से हमें जीनी चाहिए, ये भावुकता में नहीं जीनी चाहिए। भावुकता में जीने के हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों है ये ऐसा? सारे प्रयास करने के बाद भी मैं किसी को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाता? क्यों है? सोचा कभी किसी ने? वो इसलिए है कि किसी भी जीव के साथ हमारा इस भौतिक जगत में कोई संबंध है ही नहीं। आप जो मर्जी करो, जब संबंध ही नहीं है तो वो रस कहां से आएगा? वो संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। संबंध केवल कृष्ण के साथ है। इस संसार में जितने भी हमारे परिवार हैं, मित्र हैं, बताया गया ये पथ संगी, अगर हम सफर कर रहे हैं ट्रेन में, रास्ते में कुछ संगी मिल जाते हैं, उन संगी के साथ थोड़ी बहुत बातचीत की, स्टेशन आया वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, हम भूल जाते हैं, फिर हम भी ट्रेन पकड़ते हैं, नए लोग मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं केवल टाइम पास करने के लिए, फिर स्टेशन आते हैं अपनी जगह पर सब चले जाते हैं। इसी ढंग से एक शरीर मिलता है, कुछ सारे संबंधी मिलते हैं, उनके साथ कुछ बातचीत हुई, शरीर समाप्त, अपना शरीर मिल गया, फिर हुआ फिर शरीर समाप्त, फिर इस तरह से चलता गया। तो संबंध तो है ही नहीं। अब ट्रेन में आपको व्यक्ति मिला, उसको अपने जितना आपके पास ब्रीफ केस है सारा का सारा उसको दे दो, सारे सारे जेबल उतार के दे दो, तो व्यक्ति प्रसन्न थोड़ी होगा, उठेगा और चल पड़ेगा, पता नहीं कहाँ आप कहा, फिर आप दुखी होते रहो कि मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, कोई संबंध ही नहीं है। तो इस तरह आप सारी की सारी शक्तियों को व्यर्थ करवा देते हैं। और जो मनुष्य जो इतना दुर्लभ है वो केवल इसीलिए मिला है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ इस संबंध को स्थापित कर सके। तो जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करते हैं, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत, क्योंकि भगवान कपटी नहीं है, भगवान बहुत सरल है। जैसे कि आज हमने नीचे देखा राधिका रमन जी को क्या लगा हुआ था, तो भगवान अपने भक्त मालविंद्रपुरी से इतने प्रसन्न हैं कि खीच और गोपीनाथ जी ने रेगुड़ा में अपने शुभ भक्त के लिए क्या कर लिया था, खीर चुरा दी। खड़े हैं भगवान ऐसे, उनके भक्त के मन में विचार आया कि अगर मुझे खीर मिल जाती तो मैं गोवर्धन में गोपाल जी को एक खीर खिलाता, उनको अपने से बस शर्म आ गया, मैंने क्या सोच लिया। भगवान ने कहा मेरे शुभ भक्त के अंदर एक बात आई है, मैं इसकी पूरी इच्छा पूरी करूंगा। सोचिए, 12 कसोलों में खीर रखी गई, पुजारी जी आए उठा के सेंस से पहले, जो बिगड़े ऐसे चुपचाप खड़े हैं, हम उसे पत्थर के बिगड़े हैं, वो झुके होंगे, खीर उठाई होगी और रख लिया पीछे। सोचिए जरा कि भगवान कितने सरल हैं। भगवान जब मथुरा में गए थे तो उनको कुब्जा मिली, कुब्जा मतलब कि तरह तरह से उसका शरीर विकृत था, उसने क्या किया, भगवान को चंदन लगाया, बस भगवान उसे इतने प्रसन्न हो गए। भगवान ने एक पैर पर अपना, उसके एक पैर पर अपना पैर रखा, उसकी थोड़ी नीचे दो हाथ रखे, फट से दिया और वो कुब्जा इतना तरह से विकृत थी, बहुत सुंदर युवती बन गई। भगवान कितने देखे, थोड़ा प्रसन्न हो जाते, गीता में लगे पत्र कुछ परम तो एक दो में भक्त पर चली, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, भक्ति दे दो, फूल दे दो। आज किसी घर में हमारे बच्चे का जन्मदिन होगा तो क्या कहते हैं, पापा बाहर ले जाओ खाना खिलाने के लिए, आप बोलो बेटे ये फूल पत्ते खा लो, फूल पत्ते खा लो, क्या बात करते हैं। हम अपनी पत्नी के लिए बोलोगे प्रिय मैं तुम्हारे एक चीज लाया हूं बहुत सुंदर, बोले क्या, ये तुलसी दल लो, मूर्ख मत ना, मुझे क्या चाहिए, कोई आभूषण चाहिए, जेवर चाहिए, अच्छी साड़ी चाहिए, वो सब भी ला देंगे, बोले ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकर स्पेशल ठीक है, क्या क्या बातें होती है। लेकिन भगवान की कोई डिमांड नहीं है, कहते मुझे भक्ति चाहिए बस, भावपूर्वक भक्ति से मुझे कुछ भी होगी, कुछ भी आपके पास है सरलता से दो, मैं उसको स्वीकार करता हूं। ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण, उनको भूलकर, जिनके साथ हमारा संबंध है उनको भूलकर हम इस भौतिक जगत में जो अस्थाई संबंध है, जिनके साथ कोई संबंध ही नहीं है, उनको खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, तभी हम जीवन में उनके। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सुनने में तो ये बात ठीक लग रही है, लेकिन व्यवहारिक तरीके से कैसे संभव है? मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मैं क्या बोलूं? कोई संबंध नहीं है अभी कि जाओ, कोई संबंध नहीं है। हम सब पथ संगी है, एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, बस ना आपसे मैं कोई बातचीत करूंगा, ना मुझसे कोई बातचीत करेंगे, कोई बात संबंध खत्म नहीं। ऐसा नहीं, दो जीवों के बीच में भी मधुर संबंध तभी समाप्त होंगे, स्थापित होंगे, जब हम कृष्ण को केंद्र में ले आएंगे। जब कृष्ण को केंद्र में ले आएंगे तो पति और पत्नी के केंद्र में अगर कृष्ण है तो संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। अगर कृष्ण नहीं है तो संबंध हमेशा कटु रहेंगे, कड़वे रहेंगे। चाहे हमारे माता पिता का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, मित्रों का संबंध है, अगर केंद्र में कृष्ण है, कृष्ण के द्वारा हमारे संबंध स्थापित होना चाहिए कि मैं भी कृष्ण का दास, ये भी कृष्ण की दास है, मैं भी कृष्ण का दास, मेरा पुत्र भी कृष्ण का दास, सब मिलकर कृष्ण की सेवा करेंगे, तब तो संबंधों में मधुरता रहेगी, अन्यथा कटुता ही कटुता रहेगी। आज हम देख रहे हैं घर घर में लड़ाइयां हैं, क्लेश हैं, तरह तरह के, तो इसलिए इस बात को हमें समझना है। तो ये जो कार्य है कि भगवान के साथ हम अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं, ये केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, ये किसी और जन्म में संभव नहीं है। शुक्र कुकर कुत्ते बिल्लियों को हम ये शिक्षा नहीं दे सकते कि आपका भगवान के साथ संबंध है, उनका जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है आहार निद्रा भय मैथुन, कहां अच्छा खाना मिले, कहां अच्छा सोने को मिले, कहां मैथुन कर सके। लेकिन मनुष्य जीवन में भी हम ये कार्य कर सकते हैं, और 84 लाख योनियों के बाद हमें ये शरीर प्राप्त होता है। केवल मनुष्य जीवन ये जादू की छड़ी है, हम सब अभी हमारा क्या अस्तित्व है? मैं पूछूंगा आप पुरुष हैं कि नारी हैं, आप क्या कहेंगे? हम पुरुष हैं, आपसे पूछूंगा आप पुरुष हैं कि नारी हैं, क्या कहेंगे? नारी हैं। आप क्या हैं, पुरुष हैं कि नारी हैं? आप देखिए, हम ना पुरुष हैं, हम ना नारी हैं, हम क्या हैं? आत्मा है, आत्मा है, लेकिन इस समय पुरुष की देह में है या नारी की देह में है? मैं इस घर में रह रहा हूं, मैं घर नहीं हूं, इसके अंदर कोई रह रहा है जी, वो मैं हूं, है ना? तो जो ये जो मनुष्य देह मिला है, एक मशीन है, बस एक उपकरण है हमारे पास, उस जीवात्मा के पास, तो इस मशीन का हमने प्रयोग करना है भगवत धाम जाने के लिए। अगर ये मशीन चेंज हो गई, कुत्ते वाली मशीन मिल गई या बिल्ली वाली मशीन मिल गई, तब नहीं कर सकते। हर एक मशीन का कुछ उपयोग होता है, ये माइक है, इसका उपयोग है कि मैं कुछ बोलूंगा तो आवाज तेज निकलेगी, बोले इस माइक से मैं ब्रश करूं, नहीं हो सकता, माइक को सीमेंट में ब्रश नहीं कर सकता। इस माइक को खाली इसलिए बनाया गया कि आवाज इसमें जो डाली है वो आवाज तेज होकर निकले। इसी ढंग से भगवान ने बोला कि जितनी भी योनियां बनाई है वो सबसे ज्यादा प्रिय मुझे मनुष्य योनी है, ये मशीन बहुत अच्छी निकली है। इस मशीन का क्या उपयोग कर सकता है जीवात्मा जो मेरे साथ अपने संबंध को भूल गया है, वो इस संबंध के साथ मेरे साथ संबंध को पुनर्स्थापित कर सकता है। तो इसलिए अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी अच्छी मशीन आ जाए, तो एक बुद्धिमान व्यापारी का क्या सोच होती है कि अच्छी मशीन आ गई मेरे पास, तो कैसे उसको उपयोग करो? सही उपयोग करो, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, एक समय पर उसका व्यर्थ ना लाओ, है ना? कभी ऐसा देखा कि एक व्यापारी ने बाहर से मशीन इंपोर्ट किया बहुत महंगी और उसको कपड़ा डाल के ढक दिया, पड़ी हुई ऐसी मशीन, उसको नुकसान हो जाएगा। वो कहेगा ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करो, ज्यादा से ज्यादा इसे प्रोडक्शन निकालो। इसी ढंग से ये मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ मशीन है, तो हमें इसका बहुत ही सोच समझ से उपयोग करना चाहिए। बलराम महाराज कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर केवल भक्ति के लिए मिला है, तभी हम सब लोग इस मनुष्य शरीर का उपयोग अगर भक्ति के लिए नहीं करते, इसलिए आज पूरे समाज में हर व्यक्ति दुखी है, उसको अपूर्णता का अनुभव होता है, अपने आप हम इनकम्प्लीट अपूर्ण पाते हैं, क्योंकि हमने इस शरीर का सही उपयोग नहीं किया। वही पैगाम महाराज कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य देह है प्रारंभ से ही 5 वर्ष की आयु से ही हमें इसका सही उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। 5 वर्ष की आयु से आप में से कितने लोगों ने 5 वर्ष की आयु से भक्ति शुरू की थी? कितने लोग 5 वर्ष के बाद भक्ति में जुड़े हैं? 5 वर्ष की आयु के बाद कितने लोग जुड़े हैं? बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं। तो सारे 5 वर्ष में जुड़ गए थे? शर्माने की बात नहीं है, 5 के बाद ही तक जुड़े हैं। अगर ऐसे ही जुड़े 20 साल की आयु में जुड़ गए हो तो 15 साल तो गए ना, वेस्ट हो गए। अभी भी हम लोगों को बोलते हैं जिनकी आयु 40, 50, 60 साल है कि भक्ति करो, तो क्या बोलते हैं? समय नहीं है, अभी क्या जरूरत है, अभी समय नहीं है। अभी भी ये बोलते, अभी भी ये हालत है। और जो बेचारा कोई युवा अवस्था में भक्ति करने को जुड़ता है उसके माता पिता उसको रोकते हैं, एक काम ज्यादा ये भी उम्र है भक्ति करने की, पागल हो गया, पड़ोसी आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, बहुत बड़ी सभा बैठा लेंगे कि क्या हो गया, एक शोक सभा मनाई जाती है तो घर के पीछे क्यों बैठ रहे, क्या हो गया, हमारा बेटा हरे कृष्ण मंदिर में जाता है, वो तो बहुत बड़ी दुर्घटना है, रोको उसको, किसी ना किसी से रोको। तरह तरह की प्लानिंग बनाई जाती है कि बच्चे को नई गाड़ी ला दो, बच्चे को विदेशों में भेज दो, कुछ भी करो, हरे कृष्ण मंदिर ना जाने दो। इतना ज्यादा संकट के बादल छा जाते हैं, घर में मातम छा जाते हैं, कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण मंदिर जाना शुरू कर दे, लोग सोचते हैं कहीं क्या हो जाएगा, जबकि हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि ये कार्य 5 वर्ष की आयु में होना चाहिए था, लेकिन आज के समय में माता पिता ही उनका ही चरित्र नहीं है तो बच्चों को क्या चरित्र होगा। पशुओं की तरह व्यक्ति संतान उत्पन्न कर देता है केवल अपनी मैथुन की इच्छा को पूरा करने के लिए, बस कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं, काम वासना बस। तो काम वासनाओं के द्वारा हम सबकी उत्पत्ति हुई है, हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं है। और वही काम वासना से उत्पन्न जो जीव मनुष्य पैदा होता है वही कुकर और शुक्रों की तरह व्यवहार करता है, फिर माता पिता को बहुत बड़ा शौक लगता है कैसा व्यवहार कर रहा है। जिस चेतना के साथ आपने संतान की उत्पत्ति की है उसी चेतना का तो जीव भगवान डालेंगे मां के गर्भ में। आजकल की स्त्रियां तरह तरह का मांसाहार खाती है, मांसाहार खाकर अपने गर्भ को उन्होंने क्या बना लिया, शमशान घाट। तो शमशान घाट में भूत प्रेत आत्माएं तो आएंगी, कोई भक्त जीव थोड़ी आएंगे, कोई चरित्र नहीं है, कुछ नहीं है। शास्त्र में लिखा गया है वैधन हमें करना चाहिए केवल संतान की उत्पत्ति के लिए, लेकिन आज का पूरे समाज में सरकार भी कहती है गवर्नमेंट अप्रूव्ड अबॉर्शन सेंटर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, सरकार मान्यता दे रही कि यहां पे आइए गर्भपात कराइए, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप है। माता स्वयं अपने बच्चे को मार रही है, पशु भी ऐसा नहीं करते। उनसे पूछा क्यों कर दिया अबॉर्शन, नहीं नहीं अभी हम वर्किंग हैं संभाल नहीं पाएंगे, इससे अच्छा बच्चा ही पैदा ना करें, मार दे उसको ना, ये मानसिकता है, ये मानसिकता है इस समाज की। उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भागवत धर्म का पालन, तो लेकिन इसका रिएक्शन सबको भुगतना पड़ता है, पूरे समाज को पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है इसका रिएक्शन, तभी तो समाज में ये सुनामी आ रहे हैं और तरह तरह के तूफान आ रहे हैं, उछाल आ रहे हैं, तरह तरह के तरह से अटैक हो रहे हैं, ये सब उसी का परिणाम। तो जागना है, जागना होगा। प्रभुपाद कह रहे हैं केवल कृष्ण धामिक आंदोलन ही पूरे समाज को नरक में जाने से बचा सकता है, केवल कृष्ण धामिक आंदोलन। किसको ज्ञान है बताइए, इस मंदिर से बाहर निकल जाइए, किसी साधारण व्यक्ति को जीवन के लक्ष्य के विषय में मालूम ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ना पे ऋतु स्वाप गति ही विष्णु दुराश यानी बैठ माने ना अंधा का अंध उपनीय बिना दाती बनता, एक अंधा दूसरे अंधों को बोला चलो मेरे पीछे, ना करे तू स्वार्थ गति विष्णु, उनको पता ही नहीं कि हमारे जीवन का स्वार्थ है विष्णु के पास जाना, जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है धन कमाओ बस, धन और कुत्ते बिल्ली बनाओ। माता पिता के बच्चों को भी क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि बहुत धनवान बन, यानी कि अगले जन्म में कुत्ता बन, बिल्ली बन, सुअर बन, हमें कोई चिंता नहीं, हम भी सुअर बनेंगे तुम भी सुअर बनना, ठीक है कोई समस्या। कभी भी किसी माता पिता ने अपने बच्चे को यह आशीर्वाद दिया है कि तुम कृष्ण के भक्त बनो, कृष्णेर मति अस्तु, कुमारन आचरत प्राज्ञ, प्राज्ञ का अर्थ है बुद्धिमान, वो कुमार आयु से ही आचरण शुरू कर देते हैं भागवत धर्म का, कुमार आयु से ही। तो इसलिए हम सबको अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना है, क्योंकि आप देखिए अगर हम 100 वर्ष की आयु लेते हैं, 100 वर्ष की आयु में तालाब मानक बता रहे हैं, पहले 10 वर्ष वैसे निकल जाते हैं खेल, पता नहीं चलता क्या है, 3-4 वर्ष में बच्चा रोता ही रहता है, सोता है या रोता है बस, कभी क्या बीमारी कभी क्या बीमारी, आज तक तो मतलब कि माँ के गर्भ में ही होता है तभी तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। आजकल कभी आपने सुना है कि किसी भी स्त्री ने एक नॉर्मल डिलीवरी करके बच्चे को पैदा किया, कहीं ना कहीं सीजेरियन ऑपरेशन और फिर बच्चे को जॉन्डिस हो गया, प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई, इंक्यूबेशन रखना पड़ रहा है, तरह तरह की छोटे छोटे बच्चे को भी यहां से नाली जा रही है, यहां से नाली जा रही है, इंजेक्शन दिया जा रहा है, इस तरह का हमारा अनुभव है, जॉन्डिस हो गया उसको, यानी क्या क्या रोग बचपन से ही रोग से पीड़ित व्यक्ति पैदा होता है, और पहले 10 साल तो पता नहीं चलते, उसके 10 साल वो पैदा होता है तो उसको तरह तरह के मैसेज दिए जाते हैं कि युवावस्था केवल 4 दिन की है, खा लो पी लो को छुड़ा लो, वो ऐसे वो नाश्ता रहता है, 20 साल ये निकल गए, अंतिम के 20 साल अगर 100 साल माने तो बुढ़ापे में निकल गए, बुढ़ापे में उसको ये चिंता रहती है कि अभी गया बस अभी गया, तो वो फिर सोचता रहता कि मैं क्या करूं, जाने से पहले मैं ये भी करूं और बहुत ही असुरक्षित भयभीत डरा हुआ रहता है, तो 20 साल वो निकल गए, 20 साल ये निकल गए, 40 साल बाकी बचे कितने 60 साल, 60 साल में से 12 घंटे दिन के तो हमारे सोने में निकल जाते हैं, सोने खाने पीने नहाने पता नहीं चलता, तो 60 साल में से जब से निकाले तो 30 वर्ष तो सोने में और खाने पीने में निकल गए, बाकी कितने बचे 30 साल। अब इस 30 साल में भी हमारा अपने परिवार से, बच्चों से, अपने व्यवसाय से, अपनी कार से, अपने कुत्ते से इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाती है, इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाती है कि उसको बोला जाए आओ मंदिर में तो उसको समझ ही नहीं आती बात, तो मैं कैसी भाषा में बोल रहा क्यों आओ मंदिर में, क्यों करूं भक्ति, भगवान की मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, समझ नहीं आती बात। आप सबका एक्सपीरियंस है कि किसी को मंदिर बुलाओ बड़ी आसानी से भी आता है, उसको इसके महत्व का समझ ही नहीं आता, पता नहीं चलता क्यों बुला रहा है, तो वो भी जीवन ऐसे व्यर्थ है। तो हम तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं, देखिए पूरा पूरा अकाउंट की हमारे सामने उपस्थित है, 100 वर्ष आयु है तो कलयुग में तो 100 वर्ष है ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किन सपनों में हम खोए हुए हैं, कमल दलदल जीवन टलमल, कमल दलदल, आपने कभी देखा व्यवहारिक रूप से कि कमल के दल के ऊपर जल कैसे रहता है, किसी का अनुभव है, कितने क्षण रहता है, हमने देखा कि मायापुर में बैठे बहुत सुंदर सुंदर कमल थे, बहुत बड़ा कमल का पत्ति था, उसके ऊपर हमने जैसे कमल का फूल देखा हमने भजन याद आया, पानी लेकर डाला आप विश्वास करिए ऐसे स्लिप होता है पानी के ऊपर, लेस देन अ सेकेंड, एक सेकेंड भी पानी की बूंद कमल के पत्ते पर नहीं गिरती है, डालते ही ऐसे स्लिप हो जाती है, पीछे गिरती है बस, ये हमारा जीवन है, कमल डाल जीवन है, और इस छोटे से जीवन में हम तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, धोखा करते हैं कि धन अर्जित कर रहे हैं, कुछ काम नहीं आएगा, जितनी मर्जी हम धन इकट्ठा कर लें, जमीन इकट्ठा कर लें, पुत्र परिजन इकट्ठा कर लें, कोई काम नहीं आएगा, केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल। इसलिए हम सबको आज के श्लोक से सीखना चाहिए कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये मिला है केवल इसलिए, इसके लिए मिला है केवल भक्ति के लिए, केवल भक्ति के लिए, भक्ति की शुरुआत कब से कर देनी चाहिए हमें, और हमारी आयु कितनी हो चुकी है 40-50-30-35, तो अगर समझो आप किसी विवाह में जा रहे हो और ऑलरेडी लेट हो गए हो तो कैसे चलोगे, फास्ट चलोगे ना, गाड़ी तेजी से चलाओगे जल्दी पहुंच जाओ, तो आज जिन वहां में से अधिकांश लोगों ने भक्ति लेट शुरू की है, तो हमारी भक्ति की स्पीड कैसे होनी चाहिए? टॉप गियर में आप कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि बच्चे हैं, ये हैं, वो है। अरे सबका सब इन धरा केवल भक्ति कह रहे हैं, अन्य सारे कारणों को छोड़कर आपको यही कहा जा रहा है कि सारे कार्य छोड़िए। लेकिन श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तो हमें प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, बहुत ही निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यही हमें भगवत धाम वापस ले जाएगा। और जितने लोग भी योग्य व्यवसाय कर रहे हैं, अगर हम गृह आश्रम में हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, कोई समस्या नहीं है, सब काम करते रहे, लेकिन अपने जीवन के लक्ष्य को ना भूले कि जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना। इसीलिए हम सबको बहुत ही कृतार्थ होना चाहिए श्री प्रभुपाद का कि जिन्होंने ये ज्ञान दिया। आप सोचिए ना, वो अज्ञान से बिल्कुल अंधकार में हम जा रहे थे, बिल्कुल अगर ये ज्ञान प्राप्त ना होता निश्चित रूप से हम नरक में जाते। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, हमें जीवन का लक्ष्य मान चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन को हमें खूब बढ़ाना है, अपना जन्म भी सार्थक करना है और इस ज्ञान को दूसरों को देना है, खूब प्रचार करना है। तो इसलिए आप सब भक्तों से निवेदन है, आप सब बहुत ही निष्ठावान भक्त हैं, आप हर शनिवार को यहाँ पे आते हैं, मेरा आप सबके चरणों में यही निवेदन है कि आप भक्ति तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन इस भक्ति को हम तीव्रता से करें। तीव्रता से करने का भक्ति का अर्थ है कि शास्त्रों के नियमों का, गुरुजनों के आदेशों का हम बड़े सख्ती से पालन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कान से सुने और इस कान से निकालते हैं, बोलते हैं इस कान में आते हैं, इस कान से ना, इस कान से निकालते हैं, इस कान है नहीं, इस कान से सुना तो हृदय में घुसा, हृदय में घुसा, और हृदय में घुसा कर उसको मनन करके उसको अपने जीवन में उतारना है, तभी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। तो आप सबके चरणों में यही निवेदन है कि आप सब 16 माला का जप करिए, बहुत ही दृढ़तापूर्वक सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए। आप से काफी भक्त लोग सुबह मंगल आरती में आते हैं, आज के मंगल आरती में आएंगे, आज मंगल आरती में लगभग 100 भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भी आइए, गर्मियों का मौसम है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंगल आरती में आइए। कहते हैं जो मंगल आरती में आता है उसे हमेशा मंगल ही मंगल होता है, शुभ ही शुभ। अगर मंदिर से आप दूर रहते हैं तो घर में मंगल आरती कीजिए, कम से कम हफ्ते में आप एक बार तो मंगल आरती अवश्य। 16 माला का सुबह सुबह उठ के ध्यान पूर्वक जप कीजिए, ये हमारा असली बिजनेस है। 16 माला का जप करना ये बिजनेस है, हरि नाम धन को कमाना है, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो ये इस अकाउंट को देखा जाएगा कितना हरि नाम धन कमाया है। आपके पास ये प्लॉट पड़ा था, वो प्लॉट पड़ा था, इतना बैंक बैलेंस था, स्विस बैंक में अकाउंट था, कोई फायदा नहीं, जीरो, उसकी वैल्यू जीरो। लेकिन ये देखा जाएगा कि हरि नाम कितना कमाया, सारी की सारी शक्ति इस हरि नाम धन को कमाने का। 16 माला का हम जप करके फिर अपने व्यवसाय में जाएंगे, बड़े अच्छे ढंग से हम व्यवसाय करेंगे, जैसे व्यवसाय समाप्त हो शाम को फिर घर में आए, सब बच्चों के साथ मिलकर, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सब घर में मिलकर हरि नाम कीर्तन करें, उसके बाद मंदिर में आए, कुछ कथा सुने, इस ढंग से अपने जीवन को ढालें। जैसे ही हम भक्ति शुरू करते हैं हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है, नहीं तो भक्ति नहीं करते तो जीवन एक गुंजन की तरह है, इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि कोई सुलझा नहीं सकता। घर घर में एक अलग कहानी है, एक अलग कॉम्प्लिकेशन है, किसी भी व्यक्ति से आप पूछते हैं, कोई लगा के अपने हृदय की बात बताते हैं, इतनी समस्याएं, इतनी समस्याएं, कोई समाधान नजर ही नहीं आता है, ही नहीं समाधान, केवल एक ही समाधान है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने हैं आप लोग करके बैठे रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, बोलते हैं वो भी सुनिए। आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, कोई प्रश्न नहीं कर सकता है, कोई प्रश्न
मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम कृष्ण भक्ति में देश से आए हैं और ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ पे माता पिता को कृष्ण भक्ति की तरफ करना पड़ रहा है, तो उसमें किस तरह से करता है?
बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हम लोग आए हैं भक्ति में लेट आए हैं, और अगर ऐसी स्थिति है कि अपने ही माता पिता को हमें भक्ति की तरफ ले जाना है तो कैसे करें प्रैक्टिकल बात। तो इसमें कहा जाता है कि हम रूल बता रहे हैं आपको, बोल्डर रूल बता रहे हैं आप सबके लिए, अपने कि इफ आई कैन चेंज माई सेल्फ आई कैन चेंज माई एंटायर बॉडी। अगर हम अपने आप को बदल लेंगे तो पूरा विश्व अपने आप बदल जाएगा। हम लोग क्या करें, आपने ज्ञान प्राप्त हो गया, आप बहुत ही निष्ठा से 16 माह का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, भक्तों का संग करें, और साथ साथ में भगवान से प्रार्थना करें कि मैं भी अपने माता पिता को इस तरह आकर्षित कर सकूं। आप ये करिए, बाकी ठाकुर जी संभाल रहे हैं। जिन भक्तों से जिन जीवात्मों से हमें द्वेष है हमें उनका गुणगान करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनके अंदर अच्छे गुणों को देखें। हमारे इस्कॉन में एक स्वामी जी उन्होंने कहा था एनवी मीन्स इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन। द्वेष का अर्थ है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रशंसा करें। आपको किसी स्त्री से द्वेष क्यों हो रहा है कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, उसके पास ज्यादा बड़ी गाड़ी है, उसका घर मुझसे ज्यादा बड़ा है, तो एक तरीके से आप उसकी प्रशंसा ही तो कर रहे हैं कि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, उसके पास ज्यादा बड़ी गाड़ी है, ज्यादा बड़ा घर है, तो सीधा सीधा ही कर दो कि आप बहुत सुंदर है, आपका घर बड़ा अच्छा है, आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है, तो द्वेष आएगा ही नहीं। हम लोग बहुत सीधी प्रशंसा ना करके अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा करते हैं, यानी कि द्वेष। तो द्वेष की सीधा दौड़ है उसकी प्रशंसा करें और ध्यान पूर्वक। कह रहे हैं मुसीबत में होते हैं भगवान को याद करते हैं, जैसे काम करो तो नहीं होते, याद करो इसी भी से याद करो। भगवान तो डेस्परेट खड़े हैं कि कुछ तो याद करो, प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे दुख में करो या सुख में करो, भगवान तो याद करने को प्रतीक्षा कर रहे हैं, करो कोई।